जिस प्रकार से वो स्मरण करती है बच्चे को, बच्चे अपनी मैया को, वही स्मरण इसमें से ले लो और बाकी को हटा दो, किंतु इससे उनको तृप्ति नहीं। तब वो कहते हैं अजात पक्षा इव मातरम खगा तन्ने जथा बच्चतरह सुधारता। बछड़ा सूखा, मैया गई चरने के लिए, शाम हो गई, बच्चे के पेट में कुछ नहीं, पुकारे भी तो कहा, मैया तो सुनेगी नहीं, मन मार करके मसोस करके बैठा है, बड़ी भूख लगी। शाम हुई, गैयाओं का दर देखा, जैसे वो सब आ रही, उसकी मैया डकार रही और ये बछड़ा भी डकारने लग गया। आते ही देखा जैसे ये आ रही उसकी मैया, तो गृहस्थ ने उसको पकड़ करके उसको खूंटे में बांध दिया, ये मैया आएगी ये इसका दूध खा जाएगा, इसलिए बांध दिया। और गैया को भी आते ही बाहर से ही उसको भी लेकर के बांध दिया। अब मैया और बच्चा दोनों सामने है, बच्चा उछल रहा है दूध के लिए किंतु जा नहीं पाए, घर से वो ले आया मटकी दूध दूहने के लिए, बच्चे को छोड़ न जा, और वो बच्चा उछल रहा है जाने के लिए मैया से, डकर रहा है, मैया भी डकर रही। उस समय में बच्चा जो डकारता है किस लिए, दूध पीने के लिए डकारता है, इसलिए सीधे यदि वो गृहस्थ उसको छोड़ता है तो उसको ऐसे खींच लेता है गले से, जो रस्सी बंधी होती है, और रस्सी ढीली करके तब खूंटे से उसके रस्सी को खोलती है, और खोलने के बाद में वो सीधा कहां जाता है, मैया के मुख से प्यार करने के लिए और प्यार पाने के लिए जाता है, तो न कहां जाएगा, वो एकदम जोर से दौड़ करके उसके तन में पहुंच जाता है, बड़ी जोर से उसको धक्का देगा, और मैया प्रेम के साथ में अपना दूध छोड़ देती है और दूध को बड़े आराम से पीने लगता है। जब पी लिया पूरा तो क्या करेगा, मैया को छोड़ करके इधर उधर टहलने के लिए चला जाएगा, फिर मैया की कोई जरूरत नहीं। इन्होंने सोचा जे मैं अपने वाणी से भगवान का गुणानुवाद करूंगा, कैसे इस बछड़े के समान डकारता है, जैसे अत्यंत विह्वल होकर के हृदय के अंतिम कोर से, किंतु थोड़ा सा दोष आ गया किस लिए, दूध के लिए, तो मैं भी क्या भगवान को अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए पुकार रहा हूं, नहीं, इसलिए इसमें से क्या लिया जाए, केवल वाणी वाला अंश और बाकी छोड़ दो, जैसे ये पुकारता है ना, अब मरा मैं मरा, दूध नहीं जल्दी से पिला दो मैया, इसके लिए पुकारता है। हम लोग भगवान को पुकारते हैं बछड़ा जैसा पुकारते हैं क्या, नहीं, पुकारा भी कोई भूख आया तो ना तो उसमें पुकार लिया थोड़ा सा, किंतु हम लोग ऐसा बड़े आसक्ति के साथ में उसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते, इस तरह से उनको नहीं पुकारते हैं। इसलिए पुकारना हो तो वाणी के द्वारा भगवान का गुणानुवाद ऐसा ही होना चाहिए, जैसे कुएं में कोई गिर गया और पुकारे बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसे भगवान का नाम पुकार, इसलिए उसमें वाणी का अंश ले, बाकी को उन्होंने देखा जिसे इसमें तो कामना है इसलिए इसको छोड़ दिया, तीसरा दिया। प्रिया प्रिय विषुतंग बिछन्ना, विषुतंग बिछन्ना माने, बिछन्ना माने क्या होता है, बिछन्न हो गई है, बिछन्न माने क्या, विरस्य व्याकुल। अब विषुतंग माने क्या, विषुतंग माने परदेश, परदेश गया हुआ उसका प्रियतम है, ये ना प्रिया है और उसका प्रियतम, किंतु वो परदेश चला गया ना, जब परदेश गया तो वो उसकी पत्नी जो है, पत्नी नहीं प्रियतमा, इसलिए प्रियतमा और प्रिय कहा, पति और पत्नी नहीं कहा, पत्नी में कुछ गड़बड़ी हो जाती है प्रेम, उसमें गहने ले आओ, सुंदर कपड़े ले आओ और चीजें दो, उसमें भी सौंदर्य चाहिए, पति यदि कुछ नहीं देगा और स्त्री भी, पति भी यदि उससे नहीं पाएगा तो प्रेम टूट सकता है, विवाह होने से उनमें प्रेम है, विवाह नहीं होने से प्रेम नहीं रहे, और उसमें भी ये सब चीजों की जरूरत है, पत्नी यदि कुछ नहीं कर, जल गई, कुरूप हो गई, काम नहीं कर सकती, पति दूसरी शादी करेगा, इसलिए ऐसे के लिए उपमा नहीं दिया, पत्नी में विशेष करके एक बात और है, पति के साथ में जब तक की शादी हुई है, बच्चे नहीं पैदा हुए तब तक तो खूब प्रीति है। पहला बच्चा हुआ तो उसका एक अंश बट गया बच्चे में, फिर दो बच्चे हो गए, तीन बच्चे हो गए, अब वो भाग होता चला गया। और यदि पांच छह बच्चे हो गए तो पति की कोई जरूरत नहीं है, बच्चों पर ही प्रेम सब आ गया, पति रह गया, भूखा रह गया प्रेम के लिए। इसलिए पति का नाम यहां पर नहीं लिखा, प्रिय और प्रियतम का। इसलिए कहते हैं जैसे प्रिया विदेश गए, परदेश गए, सुदूर प्रवास में गए, अपने प्रियतम की चिंता करती है। कैसे चिंता करती है? उससे भी लाख गुना अच्छा वो पहले वाला नहीं पक्षी, उससे भी कोटि गुना उसकी अधिक चिंता करती है, और ये जो पुकारता है ना उससे भी अधिक जो ही मिलता है। सखी अभी तक आए नहीं, आ जाने की बात थी, क्या गाड़ी में विलंब हो गया, कहीं गाड़ी उलट तो नहीं गई कहीं? और अब जितने आने का समय होता जा रहा है और हृदय व्याकुल होता जा रहा है, कभी घर में और कभी बाहर में जाकर के देखती, अब तो नहीं आए। देखा जी स्टेशन से तो सभी गाड़ियां चली गई, टांगे रिक्शे सब चले गए, वो गाड़ी तो आ गई होगी, जरूर कहीं एक्सीडेंट हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, व्याकुल हो जाती है। ऐसे हृदय से व्याकुल रहे और वैसे ही बर यदि बच्चे हैं तो कहें अरे बेटा तुम्हारे पिताजी नहीं आए, क्या हो गया? और ऐसे नहीं, वो जो शरीर से जो सेवा है, आने के पहले ठीक समय के पहले रसोई पहले से प्रस्तुत है, सुशी पर जल रख दिया है, झलने के लिए पंखे भी रख दिया है, सब प्रकार की, और बैठने के लिए पलंग भी सब ठीक कर दिए है, सब प्रकार की घर को लीप पोत करके सब ठीक कर दिया है, अंगों से सेवा, ये तीन चीजें इसमें हैं। इसलिए यहां पर तीनों चीजें और दोनों दोनों उदाहरणों से बहुत श्रेष्ठ है, विशेष करके प्रिया प्रियतम का भाव ही गोप कृष्ण और गोपियों का है, इसका इंगित हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने उसमें दिया है। यही गोपी भाव का यहाँ पर श्रीमद भागवत में पहले आरंभ पूर्वराग से भी पहले चित्रकेतु महाराज जी ने उसमें इंगित किया। यदि भगवान के साथ में प्रीति हो तो कैसी होनी चाहिए? पहले तो कामना वासना शून्य, केवल कृष्ण के चरणों में प्रीति हो, उनकी सेवा पा सके। दूसरी बात, कैसे चार प्रकार के संबंध भगवान के साथ में हो सकते हैं या होते हैं। पहला, हनुमान का राम के साथ में जैसे दास और प्रभु का जो सेवक और सेव्य का संबंध था, अधिकांश जगत के लोग इसी में रहते हैं, करीब करीब 90% ये समझो जितने भी भक्त लोग हैं। दूसरी बात, सखा का सखा के प्रति जैसा भाव होता है, उसमें हृदय दोनों का मिल जाता है, वो पलंग पर भी बैठ जाएगा, जैसे हनुमान ये हनुमान जी हैं, अपने कंधे पर उनको बैठा लेते हैं, सब कुछ करेंगे, किंतु रामचंद्र जी के पलंग पर बैठ जाएंगे ये कभी नहीं होगा, उनके कंधे पर बैठ जाएंगे ये नहीं होगा, कंधे पर बैठाएंगे किंतु बैठेंगे नहीं, अब ब्रज के सखा क्या करेंगे, धत् तेरी के कह करके उनके कंधे पर बैठ जाएंगे। सखा का जैसा अपना जूठा खा रहे हैं अच्छा लगा उनके मुख में, हनुमान करेंगे ऐसा? न सबरी करेगी, कोई भी नहीं करेगा। सबरी जूठो फलों को नहीं देती थी, फलों से चख लेती थी उस पेड़ का, और जो मीठा होता था उसको दूसरे दिन उस पेड़ से लेकर के उनके लिए रखती थी, अपना जूठा नहीं। हमारे विदुरानी जी ने भी जूठा नहीं दिया, उनको अपने से बेमान नहीं है, जूठा खिलाने के लिए उनके सखा लोग हैं और मैया और बाप हैं, नंद और यशोदा जी खा रहे हैं, कुछ खाया कुछ बच्चे को दिया खिलाया, कुछ खाया फिर उनको दिया, और एक और भी हैं जो जूठा खिला देते, कौन है? गोपियां हैं, वो सखाओं से भी अभी इसलिए दूसरा। और तीसरा है वात्सल्य भाव, भगवान के साथ में प्रेम करना चाहते हो प्रीति, तो जसोदा मैया जैसी, नंद बाबा जैसी, जिसको उद्धव भी देकर के बड़े आश्चर्यचकित रह गए, ऐसा भाव नहीं आया, नारद जी देकर के ऐसा भाव हमें नहीं आया, कृष्ण आंगन में खेल रहे हैं, अभी स्नान कराया मैया ने, धूल में लोट पोट गए, बस मैया डांट रही है खड़े होकर के आंगन में, फिर अब तुमको गोदी नहीं लूंगी, दूध नहीं पिलाऊंगी। कृष्ण दे करके मचल गए, मैया गोदी उठूंगी और उनको उठा नहीं रहे, ऐसे हाथ दे करके झपट रही है, दूध नहीं पिलाएंगी। और आए नारद जी, देखा इस परब्रह्म को जिसको हम लोग ध्यान में भी नहीं पाते हैं, ब्रह्मा शंकर हम, और वो आज पर ब्रह्म मूर्ति धारण करके जो सुधा मैया की दूध पीने के लिए गोदी में चढ़ने के लिए मचल रहा है, ललक रहा है और रो रहा है, आंखों से आंसू की धारा गिर रही है और उसको ये डांट डपट रही है, जिसके मृत्यु भी जिसे भय बांधी, ऐसा वात्सल्य भाव कृष्ण के साथ में जोड़े। इसीलिए बाल गोपाल हुए हैं, बाल गोपाल की बहुत सी लोक सेवा करते हैं। और सबसे उन्नत है मधुर रस गोपियों का जो भाव था, ये 1% से भी कम है, वो तो परम सौभाग्यवान लोग होंगे जिन पर गोपियों की कृपा होगी, ब्रज की धूली की कृपा होगी, ब्रज रसी का रसिकों की कृपा हुई होगी, बस वही उस चीज को पाएंगे, दूसरा नहीं पाएगा। हम लोग की कथा का उद्देश्य यही है मूल, गोपियों की भावना चैतन्य महाप्रभु जिसको देने के लिए आए, अनर्पित चरण किरात श्लोक में वही सर्वोत्तम भाव है, जिसको कृष्ण के इस और गोपियों के इस भाव पर लोभ हो जाता है, ये भागवत सुनने का सबसे उत्तम यही फल है। इसी को यहां पर बतला रहे हैं, ये चारों में से कोई एक भाव हो, जब हम अच्छी तरह से विचार करके देखेंगे, चित्रकेतु महाराज जी कितने दिनों तक साधु संग किए थे, कितना दिन, उनकी आयु कितनी थी, करोड़ों वर्ष, आप करोड़ों वर्ष में नारद कभी नहीं मिले होंगे, और बड़े बड़े रसिक भक्त उस समय कोई भी नहीं मिला होगा, उनको गोपियों की पहले जो बीत गई है द्वापर बीत गया है, उनकी कथाओं को चित्रकेतु महाराज सुने नहीं होंगे, क्या भागवत भी उस समय लुप्त हो गया होगा, यदि ऊपर से लुप्त में भक्तों के हृदय में होगा, इसलिए उस भावना को लेकर के यहाँ पर प्रियम विशतम विशन्ना ये श्लोक आ रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में बतलाया गया कि भागवत में भागवत का ये लक्षण है, जिसमें कि विस्तारपुर का उपाख्यान में चित्रकेतु महाराज जी के इन भावों की उद्दीपना हुई है, ये उद्दीपन का भाव है। इसलिए श्रीमद् भागवत में पहली बार यहाँ पर एक इंगित मिला कि भगवान के साथ ही यदि प्रेम करना है तो सबसे ऊंचा भाव जो है प्रिया प्रियतम का भाव, मैं उनकी प्रियतमा हूं, वो हमारे प्रियतम है, यह भाव क्यों ना है। इसलिए चित्रकेतु महाराज जी का यह उपाख्यान बहुत ही सुंदर, हम लोग इसी से यह शिक्षा लेंगे। आयुष के बाद में हम लोगों की कथा यहाँ से आरंभ होगी। गौर प्रेमानंदे
करने लगे। उन लोगों ने विचार किया कि आप चाचा से हम लोग कैसे बचे, नारद जी भी उसमें सम्मिलित हो गए। नारद जी ने कहा भगवान को प्रकट कराने के लिए बस एक उपाय, यदि प्रेम पूर्वक संकीर्तन किया जाए तो बहुत जल्दी से आएंगे और असुर को मार करके शांति मिल जाएगी। नींद भी भगवान की जो नींद है वो कीर्तन से ही खुलती है, इसलिए सभी लोग मिल करके अभी बरसेश्वर भी कीर्तन करें, जिससे कि सब लोग भी उठ जाए।
Thank you.
जाने पर वो टूट जाएगा, नएगा नहीं। इसलिए बच्चों के ऊपर में खूब प्रभाव पड़ा। उन्होंने प्रहलाद महाराज जी से पूछा, तो भगवान को प्रसन्न करना तो बहुत बहुत कठिन है, तो हम लोग उनका कैसे भजन करें? उन्होंने प्रयास करना बहुत कठिन नहीं है, एक बात करो बहुत जल्दी से प्रसन्न हो जाएंगे। अभी सब लोग मिलकर के उनके गुणों का कीर्तन करें, देखो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए सब बच्चों को लेकर के प्रहलाद महाराज जी उस दल में मन सुखा भी था और सभी लोग मिलकर के खूब सुंदर कीर्तन करने लगे। इधर आ जाओ जल्दी से कीर्तन कराओ। तो
गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय नमो नमः। यं प्राव्रजन्तमनुते समपेत कृष्णं द्वैपायनो विरहसा सर्याजिव पुत्रे चि तन्मे तया सर्वोऽभिने दूर सर्वभूतहृदयम् तवैवास्मि तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति दिव्याय राधे सम्मान भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै चित्तास्य कामादितरङ्गमध्यै कृपामयि स्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते शरणारविन्दं।
आज प्रातःकाल प्रहलाद महाराज जी की हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज जी का उपाख्यान का वर्णन किया। इसके कुछ रहस्य भी हैं, उसको भी समझने की चेष्टा करनी। जैसे ये बतलाया प्रहलाद चरित्र के प्रथम कथा तो बंद कर दीजिए, ये बतलाया भगवान समदर्शी हैं, सबके प्रति समभावापन्न है, उनका किसी के प्रति न तो द्वेष है न विशेष प्रेम है। तो भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, संतों का पक्ष लेते हैं और असुरों के विरोधी होते हैं, उन्हें मारते हैं, हत्या करते हैं, वध करते हैं, ऐसा क्यों होता है? कहने ठीक ही, ये देखने का भ्रम है जो भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं, असुरों का विनाश करते हैं। वो किसी का विनाश नहीं करते, सबका ही प्रिय है, सबके सुहृद। तब जब देवता दानों में युद्ध होता है तो वो देवताओं का पक्ष क्यों लेते हैं? तो इसी के लिए प्रहलाद महाराज जी का यह उपाख्यान उसमें वर्णन किया गया। जैसे आग किसी की शत्रु नहीं है, किंतु कोई यदि व्यक्ति कोई व्यक्ति आग में जल करके मर जाए तो ये किसका दोष? आग का दोष है ना उस व्यक्ति का? नदी है यमुना नदी, सबके लिए जल देती है, पानी देती है, जीवन देती है, और उसी यमुना में कोई आत्महत्या कर ले, डूब करके मर जाए, तो ये यमुना जी का ये उसके प्रति शत्रुता थोड़े है? कोई यहाँ पर बैठा है, सूर्य आकाश में उदित हो रहे हैं, जहाँ पर कोई बाधा नहीं है वहाँ पर सूर्य की रोशनी पड़ती है,
तो इसका मतलब ये नहीं ये घर में बैठे लोगों को भी वो प्रकाश दें, उनका तेज तो वहां नहीं आएगा, धूप नहीं आएगी, तो जब धूप लेना है तो बाहर नहीं जाओ। ऐसे ही भगवान का स्वरूप है आनंदमय शुद्ध सत्व भी शुद्ध सत्वमय है, तो भगवान को पाने के लिए उसमें वैसे ही शुभ गुण होने चाहिए, अप्राकृत गुण होने चाहिए, तब तो वो समझेगा, अन्यथा नहीं। इसलिए भगवान का किसी के प्रति द्वेष नहीं है, जो कुछ ये होता है तो ये काल कराता है। जैसे अभी दिन है, आप लोग सो क्यों नहीं जाते, अभी आधी रात हो जाए ना तो क्या होगा, अंधकार रात हो जाएगा, कोई बातचीत तो ना करे तो अपने आप आदमी सो जाएगा। इसलिए काल के द्वारा आदमी जगता है, सोता है, काल के अनुसार आदमी जन्म लेता है, मरता है, इसमें किसी का दोष नहीं है। भगवान साक्षी के रूप में व्यवस्था भर सकते हैं, इसलिए सब कुछ भगवान ही नहीं करते कराते। कुछ लोग कहते हैं कि बिना भगवान की इच्छा से पत्ता तक नहीं डोलता, बात तो ठीक है। दुर्योधन और एक तरफ में अर्जुन है, दुर्योधन कहता है ये प्रभु आप विश्व ब्रह्मांड के नायक, हम तो कठपुतली हैं और आप कठपुतली को चलाने वाले हैं, अंदर बाहर में आप हैं, आप जैसा चलाते हैं वैसा ही मैं करता हूं। जनानि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जनम न धर्मम न च मे निवृत्ति। मैं धर्म जानता हूं किंतु उसमें हमारी प्रवृत्ति नहीं है, अधर्म भी जानता हूं किंतु उससे हमारी निवृत्ति नहीं होती। वो आप जैसे नचाते हैं वैसा नाचते हैं, इसमें हमारा कोई दोष नहीं है न गुण है, और यदि कुछ दोष है तो क्षम्यताम, आप क्षमा करें, आपने जो कुछ करा है वैसे ही मैं करता हूं, आपने लड़ाया मैं लड़ लिया, आपने कहा जे धोखा दो हिता से तो हमने धोखा दे दिया, हमने पांडवों को जलाया, उनको कुछ नहीं दिया, ये सब आपकी ही लीला है, इसमें हमारा कोई दोष नहीं, ऐसे असुर लोग कहते हैं। भक्त लोग क्या करते हैं, भक्त लोग कहते हैं कि जब मैंने कुछ अन्याय किया ये हमारी स्वतंत्रता का हमारा ये दोष है, और अच्छा कर्म जो हुआ आपने जो प्रेरणा दे करके कराया तो उससे हुआ। इसलिए अभी हम जो कुछ कर रहे हैं अभी अपनी स्वतंत्र इच्छा से कर रहे हैं, और जब प्रभु के भक्त हो जाएंगे, प्रहलाद जैसे हम लोग हो जाएंगे, हनुमान जी जैसे हो जाएंगे, उस समय जो कुछ वो लोग करते हैं प्रभु कराते हैं उनके द्वारा। भरत जी को, चित्रकेतु महाराज जी को और जय विजय, इनको प्रभु ने कराया, तब उन्होंने किया अपने मन से नहीं, इसलिए उनका दोष नहीं ये तो ठीक है। किंतु अभी हम जो पाप कर्म करते हैं पुण्य करते हैं, प्रभु ने स्वतंत्रता हमको दी है, किंतु इस स्वतंत्रता का असद व्यवहार यदि करेंगे तो उसका भोग पड़ना पड़ेगा। तुम्हें चक्की में एकदम पीस देंगे, नहीं तो हलवा बना देंगे, छोड़ेंगे नहीं, एक एक चीज का विचार करेंगे। इसलिए यह सब विचार करके हमको चलना चाहिए। चित्रकेतु महाराज जी भगवान के अब परिकर हो गए हैं, पुत्र के मरने के बाद में, साधन भजन करने के बाद में वो शिव जी के बंधु सखा जैसे हो गए हैं, वो परम मुक्त हो, उनकी वस्तु सिद्धि भी हो गई है। इसलिए उस समय में उनके जो व्यवहार हैं भगवान की इच्छा के अनुसार में होते हैं, उनके द्वारा भगवान ने देखा कि जगत के लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, इसलिए भगवान की प्रेरणा से जो कुछ किया उन्होंने किया। इसलिए उनको मत समझना जब उन्होंने शंकर जी की निंदा किए और इसलिए उनको दुर्गति होकर के धृतराष्ट्र होना पड़ा, नहीं, असुर की स्थिति में भी भगवान का भजन हो सकता है। प्रहलाद महाराज जी तो असुर ही थे, धृतराष्ट्र साधारण नहीं था, चित्रकेतु महाराज थे, उन्होंने उस अवस्था में भी इंद्र से लड़ाई कर रहे हैं और उस समय में भक्ति का अंतिम बातें सब महापरम महाभागवत जैसा कह रहे हैं। इसलिए चित्रकेतु महाराज जी का देवी जी के चरणों में या शंकर जी के चरणों में अपराध नहीं हुआ, बल्कि जो देखने वाले हैं जैसे यह देवी का दोष हुआ, किंतु देवी का दोष भी नहीं ले सकते, क्यों, अरे शंकर जी की अर्धांगिनी वो भी परम मुक्त हैं, इसलिए उनका दोष हो सकता है नहीं। उस समय में भगवान ने योग माया की शक्ति से उनको विचारों को मोहित करके उनके द्वारा जगत की शिक्षा के लिए ऐसा करा लिया, ऐसा समझना, और नहीं तो कहीं चित्रकेतु महाराज जी के चरणों में दोष हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, और नहीं तो देवी के चरणों में अपराध हो जाएगा। इसलिए खूब सावधानी चाहिए। भरत जी को आसक्ति नहीं हो सकती, क्यों? वो सिद्ध हो गए थे, भागवत में लिखा। वह हिरण होकर के जब जन्मे तो उनको पहले पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था, या ब्राह्मण के बालक होकर के आए, पूर्व जन्मों की उनकी सिद्धि थी, अर्थात तो स्मरण सब था। हमको आपको दूसरों को बड़े बड़े महात्माओं को क्यों नहीं याद आती पूर्व जन्म की बातें? इसलिए कि वो भावावस्था में सिद्ध थे। भगवान उनके द्वारा ये दिखाना चाहते थे, भावावस्था में आने पर भी प्रेम जब तक नहीं आएगा तब तक कुछ कुछ त्रुटियां रह जाती हैं, कुछ कुछ अनर्थ रह जाते हैं, और उस समय यदि वो अनर्थ बढ़ गया, साधु संतों के चरण में यदि कुछ अपराध हो गया तो वहां से पतन की संभावना है। इसलिए साधुओं को सब समय सावधान रहना चाहिए, इस शिक्षा के लिए उनके द्वारा कराया। जय विजय की बात तो क्या, मैं समझता हूं कि जय विजय बड़े हैं ना सनक सनंदन सनातन बड़े हैं? कौन बड़े हैं? सनक सनातन कभी क्वचित जा सकते हैं वैकुंठ में, किंतु भगवान के चरणों की सेवा करना, उनकी सब प्रकार से दिन रात सेवा में मग्न रहना, इन लोगों के लिए संभव नहीं है। ये पीछे से सनक सनंदन सनातन नहीं कही, जबकि भाव योग माया का प्रभाव भगवान ने हटा लिया। अरे मैंने ये क्या कर डाला, भगवान के नित्य परिकरों को जो कि नित्य भगवान की सेवा करते हैं, और मैंने उनको अन्याय से न समझने के कारण अभिशाप दे दिया, ये क्यों हुआ? आज तक तो मुझको किसी को मैंने अभी संपात किया नहीं, इनको क्यों दिया? उसमें मैं भगवान से हाथ जोड़ करके प्रार्थना, महो प्रभो हमारा अपराध इनके चरण में ही, क्या बात क्या थी? बात ये थी, भगवान तो सभी रसों के नायक हैं, विषय हैं, वो विचार कर मैंने सब रसों का स्वादन किया, शांत दास सक्ष बात्सल्य अथवा इनका हास्य अद्भुत करुण रौद्र भयानक विभत्स सबका मैंने आस्वादन, किंतु वीर रस मैंने आस्वादन नहीं किया। उस वीर रस का आस्वादन करना चाहिए प्रभु के अंदर में, इस भाव को देकर के जय विजय जो उनके प्रिय सेवक थे, एकांतिक सेवक थे, ओह प्रभु की लड़ने की इच्छा हो रही है। क्यों हो गई? परम स्वतंत्र हैं, स्वराज हैं, क्यों कब किसकी जैसी इच्छा हो जाती, क्योंकि कैफियत मांगने वाला उनसे कोई नहीं है, इसलिए इच्छा हो गई। इच्छा हो गई मदुरा स्वसाधन की इच्छा कृष्ण को क्यों हो गई? हो गई क्योंकि सब रसों के वो विषय हैं, इसलिए हो गई, कोई कैफियत नहीं कहा जा सकता, इसलिए दिव्य स्वसाधन की इच्छा हुई। तो जय विजय उनके प्रिय सेवक ने सोचा कि प्रभु से मैं प्रभु की इच्छा को पूर्ण करना है, नहीं तो सेवक क्या? किंतु है ये बड़ी कठिन चीज, प्रभु के साथ में यदि अभिनय करके लड़ूं तब तो गड़बड़ होता, तो वो उनका मन भरेगा नहीं। इसे सचमुच में शत्रु का आवेश भाव रख करके और उसे लड़ूं तो प्रभु के भी छक्के छुड़ा दूं, उनको भी दिव्य रस आस्वादन करवा दूं, तो हमारा ये भक्त भाव है। जैसे कृष्ण सोचते हैं जो हमको कोई ऐसे मिले, आज तक तो लक्ष्मी जी का प्यार मिला, उनकी सत्यभामा और रुक्मिणी का भी है भाव, किंतु कोई ऐसे मिलता जो हमको चोर चोट्टा धुरत ऐसे कहे, तो ऐसा कहने के लिए राधा जी का एक भाव हुआ, उन्होंने सब कुछ कह दिया उनको, क्योंकि ये रसास्वादन हुआ। उसी तरह से दिव्य रस का आस्वादन करना चाहते हैं, इसलिए सोचा जो अभिनय से नहीं होगा, जब प्रभु आइए हमसे कुश्ती लड़े, सचमुच में इनको उस भाव से कुश्ती लड़ा दूं और उनके साथ में युद्ध करूं, किंतु हो कैसे, मैं इनका विरोधी कैसे बनूं? प्रभु से मन ही मन में कहा, प्रभु ये आप ही के द्वारा संभव है जो हमको उस रूप में बनाकर के अब तब हमसे युद्ध कीजिए।